بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज रविवार है, जून की 5, हुरदाद माह की 15 और जिलकादा की 5 तारीख। कार्यक्रमों में पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके बाद कार्यक्रम अनमोल बातें पेश किया जाएगा, जिसके उपरांत राजनीतिक चर्चा होगी। फिर हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार सुनवाएंगे। सभा के अंत में 15 खुर्दात पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। ये थी रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान के गुप्तचर मंत्री ने कहा है कि देश की व्यवस्था हर धमकी का मुकाबला करने में सक्षम है। उत्तरी कोरिया ने फिर मिसाइल का परीक्षण किया है। नेटो व्यापक स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। बांग्लादेश में डिपो में आग लगने से दसियों लोग जलकर मर गए। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी की 33वीं बरसी के मौके पर इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता द्वारा दिया गया भाषण इस समय विश्व मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर व्यापक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई के हवाले से ये लिखा है कि इस्लामी गणराज्य में जनता बहुत अहम तत्व है और दुश्मन राष्ट्र को कभी भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकेगा। ईरानी सरकार और लोगों को आमने सामने लाने में दुश्मन के सारे अनुमान गलत सिद्ध हुए हैं। वहीं स्विस इन्फो न्यूज़ चैनल ने भी अशांति और मतभेद को हवा देने पर आधारित ईरान की दुश्मन ताकतों के प्रयास के बारे में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के बयानों को प्रसारित किया। यूएस वेबसाइट ने भी इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के हवाले से ये लिखा है कि आज शत्रु की सबसे बड़ी इच्छा ईरान में इस्लामी व्यवस्था और जनता को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देने की है, लेकिन दुश्मन के सभी अंदाजे पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। ईरान के गुप्तचर मंत्री ने बताया है कि हमारा देश शत्रु की क्षमा कीजिएगा ईरान के गुप्तचर मंत्री हुज्जतुल इस्लाम सैयद इस्माइल खतीब ने बताया है कि हमारा शत्रु देश की आंतरिक मजबूती से डरता है। उन्होंने रविवार को IRGC की थल सेना के कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय हमारे शत्रु अपनी समस्त संभावनाओं के साथ ईरान के विरुद्ध खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शत्रु को इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि ईरान की व्यवस्था के भीतर हर प्रकार की धमकी का मुकाबला करने की क्षमता पाई जाती है। ईरान के गुप्तचर मंत्री के अनुसार अमरीका की सुरक्षा एजेंसियों पर जितना धन खर्च किया जाता है वो ईरान के वार्षिक बजट से भी अधिक है। वे लोग इस्लामी गणतंत्र ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सारी संभावनाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ये राष्ट्र का साहस और हिम्मत है जिसने इस्लामी क्रांति को सुरक्षित कर रखा है। सैयद इस्माइल खतीब ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में हमारा दुश्मन सामाजिक परिस्थितियों को खराब करके लोगों के मन को ईरान से घृणित कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने 3 ईरानी द्वीपों के संबंध में फारस की खाड़ी सहयोग परिषद के एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि तीनों द्वीप हमेशा से ही ईरान के थे और हमेशा ईरान के ही रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने एक ट्वीट के जरिए ये बात बल देकर कही है कि फारस की खाड़ी में 3 ईरानी द्वीप ईरान का अभिन्न अंग है और दुनिया की कोई भी ताकत इनको ईरान से अलग करने की शक्ति नहीं रखती। उन्होंने कहा कि ये तीनों द्वीप ईरान के थे और हमेशा ईरान के रहेंगे। जापानी कोस्ट गार्ड ने रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तरी कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। उत्तर कोरिया का यह प्रक्षेपण दक्षिणी कोरिया और अमरीका द्वारा बड़े पैमाने पर 3 दिवसीय अभ्यास के बाद हुआ है। उत्तरी कोरिया ने रविवार को अपने पूर्वी तट से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने रविवार की सुबह को बताया है कि उत्तरी कोरिया के पूर्वी सागर में एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि सियोल और वाशिंगटन ने 4 साल से अधिक समय में अमरीकी विमानवाहक पोत को शामिल करने वाले अपने पहले संयुक्त अभ्यास को अंजाम दिया है। गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहे प्योंगयांग ने इस साल अपने हथियार कार्यक्रम को अपग्रेड करने पर 2 गुना काम शुरू कर दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए नेटो के 40 सदस्य देशों ने अपने आधुनिक हथियार स्वीडन भेज दिए हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के सदस्य देश एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने पत्रकारों को यह बताया है कि नेटो के सदस्य देशों ने लगभग 40 युद्धपोत शनिवार को स्वीडन की राजधानी भेजे हैं। ये देश संयुक्त रूप से कल से सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। बाल्टिक सागर में किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में स्वीडन और फिनलैंड भी भाग लेंगे। स्वीडन और फिनलैंड नेटो के नए सहयोगियों के रूप में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने जा रहे हैं। इन दोनों देशों ने हाल ही में नेटो में सदस्यता हासिल करने की दरख्वास्त की थी। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके घोषणा की है कि उनके देश के युद्धक विमानों ने भी 40 युद्धपोतों तथा 20 युद्धक विमानों की सहायता से एक सैन्य अभ्यास आरंभ किया है। बांग्लादेश में एक निजी कंटेनर डिपो में विस्फोट के कारण लगी भीषण आग में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है। इस विस्फोट में 450 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक डिपो में हुए धमाकों में 48 लोगों की मौत हो गई है। द डेली समाचार पत्र ने बताया कि चटगांव के सीताकुंड उपजिला में कदमरौल क्षेत्र स्थित बीएम कंटेनर डिपो में शनिवार रात आग लग गई। डिपो में लगी आग और उसके बाद हुए विस्फोट में कम से कम 44 या 48 लोगों की मौत हो गई। पुलिस एवं दमकल कर्मियों सहित सैकड़ों लोग इसमें झुलसकर मर गए। ढाका ट्रिब्यूनल ने रेड क्रिसेंट के में स्वास्थ्य एवं सेवा विभाग के प्रमुख के हवाले से बताया है कि इस घटना में 400 अधिक से लोग घायल हुए हैं, जिनमें कम से कम 350 लोग CMCH में भर्ती हैं। उन्होंने मृतकों की संख्या में वृद्धि की आशंका जताई है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने वाली भाजपा ने अपनी प्रवक्ता को बाहर का रास्ता दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को भाजपा की प्रारंभिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है। پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وادت بیان دینے کے بعد نوپور شرما کے ورد ان کی ہی پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ نوپور شرما دوارا حضرت محمد کے بارے میں اپمان جنک ٹپڑی کرنے کے بعد مسلمانوں کی اور سے کیے جا رہے ورود کے کارن بھاجپا کو اب بیک فٹ پر آنا پڑا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی نے اپنی پروکتا کے اپمان جنک بیان کے بعد یہ کہا ہے کہ وہ سبھی دھرموں کا سمان کرتی ہے اور کسی بھی دھرم کے پوجنی شخص کا اپمان سویکار نہیں کرتی۔ میانمار میں جیلوں میں بند راجنیتک قیدیوں کو وہاں کی سینا پھانسی دینے کا من بنا چکی ہے۔ سنیکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو نے اس سمبھاونا پر کڑی پرتکریا جتائی ہے کہ میانمار کے راجنیتک بندیوں کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ سنیکت راشٹر سنگھ نے میانمار کی سینک سرکار سے اس فیصلے کی کڑے شبدوں میں نندا کی ہے کہ راجنیتک بندیوں کو پھانسی دی جانی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میانمار میں سینا دوارا ستا ہتھیانے کے دوران بند کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی اور سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ میانمار کی سینک سرکار دوارا راجنیتک بندیوں کو موت کی سزا دیے جانے کے فیصلے کا ہم ورودھ کرتے ہیں، یہ سوتنترتا ایوم سرکشا کا ہنن ہے۔ رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1 فروری 2021 میں میانمار میں ہونے والے سینی ودروہ کے بعد سے اب تک کم سے کم 113 لوگوں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پورے وشو میں بھوک کا سنکٹ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ کھادی سرکشا کے بارے میں امریکہ کے وشیش دوت نے بتایا ہے کہ ورتمان سمے میں وشو میں کم سے کم 200 ملین لوگ بھوکمری کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیری والر نے وشو میں کھادی آپورتی کے بارے میں کہا ہے کہ یوکرین یدھ نے کم سے کم 40 ملین لوگوں کو بھوکمری میں پھنسا دیا ہے۔ اس پرکار اب وشو میں 200 ملین لوگوں کو بھوکمری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
انمول باتیں
دوستو، کاریکرم انمول باتیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ آج ہم سپریم لیڈر کی نظر میں امام خمینی کے ویکتتو اور تارکک دھرم اسلام کے بارے میں چرچا کریں گے۔ سید میسم کا سلام سویکار کیجیے۔ اسلامی کرانتی کے ورش نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ویکتتو کی وشیشتا یہ تھی کہ انہوں نے بہت بڑا پریورتن کیا۔ امام خمینی خود میدان میں اترے اور بڑا پریورتن کیا۔ انہوں نے کیول بیان نہیں دیے اور نہ ہی صرف آدیش دیے۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ امام خمینی ویکتیگت روپ سے خود بھی پریورتن کے اچھک تھے اور خود بھی پریورتن کے جنک تھے۔ پریورتن پیدا کرنے میں ان کی بھومیکا کیول ایک گرو، ٹیچر یا استاد کی نہیں تھی، بلکہ ان کی بھومیکا آپریشن میں ایک کمانڈر اور پورے واستوک ارتھوں میں ایک نیتا کی تھی۔ اسلامی کرانتی کے ورش نیتا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی شکشا اور پرشکشا کے دوران وبھن کھیتروں میں کئی بڑے پریورتن انجام دیے، جن میں سے کچھ کی اور آج میں اشارہ کروں گا۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ پراچین کال سے ہی اس مہا پرش میں پریورتن کی بھاونا موجود رہی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ 1962 میں اسلامی کرانتی کے آرم سے یہ ان میں بھاونا پیدا ہو گئی ہو، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ یووا کال سے ہی ایک پریورتن کے چک جوان تھے اور اس کی نشانی وہ جیونی اور نوٹ ہے جسے انہوں نے جوانی کے زمانے میں لگ بھگ اپنی عمر کے 30ویں دشک میں سورگیہ وزیری یزدی کے کاپی میں لکھا تھا، اور سورگیہ وزیری نے وہی کاپی مجھے بھی دکھائی تھی۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اسلام کو تارکیک دھرم قرار دیتے ہیں اور پویتر قرآن کو ایشوریہ نشانیوں کو چنتن منن کرنے کا آدیش و نمنترن دینے والی کتاب قرار دیتے ہیں۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ اسلام دھرم پر اس بات کا آروپ لگانا کہ وہ بدھی سے دور ہے اور بدھی سے اس کا کوئی ناتا نہیں ہے، یہ چیز اسی طرح اتیاچار پورن ہے جس طرح ایک اسپشٹ چیز کا انکار کیا جانا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی سورج کے فائدے یا دھوپ کے لابھ کا انکار کرے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کہتے ہیں کہ دنیا کی کون سی ایشوریہ کتاب یا آسمانی پستک میں اتنی جگہ سمبودھکوں کو چنتن منن کرنے کا آدیش دیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ دنیا کی کون سی آسمانی کتاب میں سب سے پہلے سمبودھن میں گیان، قلم اور شکشا پر دھیان دیا گیا ہے اور ان سب چیزوں کو مہتو دیا گیا ہے۔ آج پشچمی دنیا اگر گیان وگیان میں پرگتی کر رہی ہے تو کون اتیاسکار یا آوشکارک ہے جو انصاف سے اس بات کی پشٹی نہ کرے کہ ان سب چیزوں کو اسلامی جگہ سے لیا گیا ہے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کہتے ہیں کہ مدھیہ یوگین کال، جو پشچمی دنیا کا اندھکارمئی کال اور اندھیرے سے بھرا ہوا یوگ تھا، اس کال میں اسلامی جگت میں گیان وگیان وچار درشن شاستر کا بول بالا اور چرچا تھی۔ اس کال میں ابن سینا، فارابی اور ان جیسے لوگوں کے ناموں کا چرچا تھا۔ دوستو، کاریکرم کا سمے ہی سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ترکی اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ دشمنی بھری نیتی کو آگے بڑھا رہا ہے، جائزہ لے رہے ہیں رویش زیدی۔
آتنکواد سے مقابلے کے بہانے ترکی اپنے پڑوسی دیشوں کے خلاف سینی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترک راشٹرپتی رجب طیب اردوغان اپنی اس غلط ودیش نیتی کو جائز بھی ٹھہرا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر سیریا کے خلاف سینی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیریا کا اتری علاقہ ترکی کے لیے بفر زون ہے اور انہیں یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی اس علاقے میں انکارا سرکار کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے۔ اردوغان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انکارا نے آپریشن یوروفریٹس شیلڈ، اولیو برانچ، فاؤنٹین آف پیس اور لاک کلاک جیسے سین آپریشنوں کے ذریعے ترکی کی دکشنی سیما پر آتنکوادی کراسنگ کی یوجنا کو نشٹ کر دیا ہے۔ نسندیہ ترک راشٹرپتی کے یہ دعوے اپنے دو پڑوسی دیشوں کی بھومی پر قبضے کو نہ کیول کسی طرح صحیح ٹھہراتے ہیں بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھوش میں سیریا سنکٹ ادھک گہرا سکتا ہے، کیونکہ اگر سیریا کی سین شکتی میں وردھی ہوتی ہے تو دمشق بھی ترکی سے لگی سیما کو اپنے لیے بفر زون گھوشت کرنے کا پریاس کرے گا۔ دراصل کہا جا سکتا ہے کہ اس غلط نیتی پر یہی ویرام لگنا چاہیے، کیونکہ اس کا جاری رہنا پورے علاقے کی سرکشا کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اردوغان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ترکی ان سبھی دیشوں پر حملہ کر سکتا ہے کہ جو کمزور ہیں اور اپنی رکشا نہیں کر سکتے۔ اردوغان کی دھمکیوں کے جواب میں سیریا کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ اتری سیریا میں بفر زون استھاپت کرنے کی ترک راشٹرپتی کی کھوکھلی دھمکی اس دشمنی کا حصہ ہے جو انکارا پچھلے کئی ورشوں سے سیریائی راشٹر کے خلاف پال رہا ہے، اور اس نے اپنے پڑوسی دیش کی سمپربھوتا کو داؤں پر لگانے کی قسم کھا رکھی ہے، کیونکہ ترکی 2011 سے ہی سیریا سنکٹ کا ایک بھاگ رہا ہے اور وہ سیریا کو بانٹنے اور اس کے ایک بھاگ پر قبضہ کرنے کی اپنی یوجنا نہیں چھوڑی ہے۔ حالانکہ یہ یوجنا صرف ترکی کی یوجنا ہی نہیں ہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ بھی اسی ادیش کو پراپت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ اسپشٹ ہے کہ انکارا کچھ شیتری اور ویشوک شکتیوں کا سمرتھن حاصل کرنے کے لیے ان کی اچھا پوری کرنے اور ان کی سیوا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خود اردوغان کے دل میں اپنے پڑوسی دیشوں کو لے کر ایک دویش ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔
اسرائیل کے پردھان منتری نے زائونی شاسن کے آنترک پتن کی چیتاونی دی ہے۔ جائزہ لے رہے ہیں قائم رضوی۔
اسرائیلی پردھان منتری نفتالی بینت نے آنترک روپ سے زائونی شاسن کے پتن کی چیتاونی دی ہے۔ اسرائیل پروپیگنڈے کے استر پر ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور سامان ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی چنوتی ہے تو وہ صرف ایران کا پرمانو کارکرم ہے۔ اگر وہ بھی اس کی اچھا کے انوسار حل ہو جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی گمبھیر چنوتی باقی نہیں رہے گی۔ حالانکہ موجودہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ اس شاسن کی اصلی چنوتی خود اس کے بھیتر ہے نہ کہ باہر سے۔ جہاں تک ایران کے پرمانو کارکرم کا سوال ہے، وہ اسے اس لیے سب سے بڑا مدعا بنا کر پیش کرنے کا پریاس کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان اس کی آنترک چنوتیوں سے ہٹ جائے۔ دوسری اور وہ ایران کے مدعے کو اس لیے بھی سرخیوں میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ فارس کی کھاڑی کے عرب دیشوں کو ڈرا کر انہیں اپنے پالے میں لایا جا سکے اور ان کے ساتھ سمبندھوں کو سامان بنانے کے سمجھوتے کیے جا سکیں۔ یہ کام سامانیہ استھتی میں سمبھو نہیں ہے۔ بینت کی گٹھبندھن سرکار کے لیے پورو زائونی پردھان منتری نیتن یاہو گمبھیر چنوتی پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی سرکار کو بچانے کے لیے بینت ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ وہ ایسی باتیں زبان پر لا رہے ہیں کہ اگر یہی بات کوئی اور کہتا تو اس پر یہودی ویرودھی ہونے کے آروپ مڑ دیے جاتے۔ بینت نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی آنترک لڑائیوں کی وجہ سے دو بار بٹ چکے ہیں اور آج پھر سے تیسری بار ہم وبھاجن کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہم سبھی کی کڑی پریکشا جاری ہے، لیکن کیا ہم اسرائیل کو سرکشت رکھ سکتے ہیں؟ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ بینت کے دھر ویرودھی نیتن یاہو کا بھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے۔ بنیامین نیتن یاہو نے 2017 میں یہودیوں کے سوکت سماروہ کے افسر پر یہ کہا تھا کہ میں بھرپور پریاس کروں گا تاکہ اسرائیل اپنی 100ویں ورشگاٹھ منا سکے، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اتہاس گواہ ہے کہ یہودیوں کا کوئی بھی شاسن 80 سال سے زیادہ تک نہیں چل پایا ہے۔ اسرائیل کے سبھی نیتاؤں، ادھیکاریوں اور یہاں تک کہ میڈیا میں اس چنتا کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہارتس کے پترکار نے لکھا تھا کہ اسرائیل اپنی انتم سانسیں لے رہا ہے۔ اب یہاں پر جیون باقی نہیں بچا ہے بلکہ سین فرانسسکو یا برلن کا رخ کرنا پڑے گا۔ سمبھو ہے کہ ہم ایک ایسے بندو پر پہنچ گئے ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے اور ہمارے پاس قبضہ ختم کرنے تتھا اویدھ بستیوں کے نرماڑ کو روکنے کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں بچا ہے۔ اسرائیل پچھلے کئی ورشوں سے آنترک سنکٹ سے جوجھ رہا ہے۔ اسرائیل کی آبادی میں کٹرپنتھیوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان پر ادھک دھیان دیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر سرکار کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور اسے پتن کی کگار تک لے جاتے ہیں۔ پرینام سوروپ اسرائیلیوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور وہ بھیتر اور باہر سے زائونی شاسن کو کمزور ہوتے ہوئے اور بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت پرشاست جموں کشمیر میں بھی امام خمینی کی برسی منائی گئی ہے۔ بیورا دے رہے ہیں شری نگر سے سپت حسن۔
وشو بھر کے اسلامی جنتا کے ساتھ ساتھ بھارت پرشاست جموں کشمیر میں بھی امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی 33ویں برسی کے حوالے سے وبھن سباہیں آیوجت ہوئی جس میں انہیں شردانجلی ارپت کی گئی۔ اس حوالے سے آج مجلس علماء امام جموں کشمیر نے ایک سبھا کا آیوجن سری نگر کے نکٹوردی چھیتر گنڈی ہسبٹ میں کیا تھا۔ اس میں استھانیہ اور دیشی استھانیہ اور अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंटेलेक्चुअल्स ने भी भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इंटेलेक्चुअल ने जहां विश्वभर के मुसलमानों की समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एकता में करार दिया, वहीं पर इन इंटेलेक्चुअल्स और धार्मिक नेताओं ने इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी पर भी विस्तार के साथ रोशनी डाली। धार्मिक नेताओं ने कहा कि इमाम खुमैनी ने जिस इनकलाब की बुनियाद डाली उसने विश्व के तमाम मजलूमों को जालिम के सामने खड़ा होने का सलीका दिया। उलमा ने कहा कि इनकलाबी इस्लामी ने जहां मजलूमों को एक आवाज़ दी वहीं पर अब इस्तकबार आखिरी सांसें ले रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी रेवोल्यूशन की देन है।
और जो नियामत खुदा ने इंसान को अता की है वो किसी मखलूक को अता नहीं की।
इस अवसर पर उलमा ने इस अवसर पर धार्मिक नेताओं ने रेडियो तेहरान के साथ वार्ता करते हुए कहा,
देखिए आज बानिए इनकलाब इस्लामी रहबर कबीर बुत शिकन हज़रत इमाम खुमैनी अलैहि रहमत की 35वें बरसी दुनिया भर में मनाई जा रही है।
उधर उत्तरी जिला बारामूला के वतरगाम में परवानी विलायत ने इस हवाले से एक सभा का आयोजन किया था, जबकि श्रीनगर के मीर बहरी में एजुकेशन ट्रस्ट ने भी एक सभा का आयोजन किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में घाटी में सक्रिय छापामार संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक वरिष्ठ सदस्य हताहत हुआ, जबकि इस मुठभेड़ में एक नागरिक और 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल सुरक्षाकर्मियों में से एक की स्थिति नाजुक बताई जाती है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम अनमोल बातें, और उसके बाद आप सुनेंगे कुरान ईश्वर चमत्कार, और अंत में हम आपको सुनाएंगे एक विशेष कार्यक्रम।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की 61वीं और 62वीं आयतों की तिलावत सुने।
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
موسى نے ان لوگوں سے کہا धिक्कार हो तुम पर, झूठ गढ़कर उसे ईश्वर पर न थोपो कि वो तुम्हें अपने एक कड़े दंड से विनष्ट कर देगा, और जिस किसी ने भी ईश्वर पर झूठ थोपा वो घाटे में रहा। तो अपने मामले में फिरौन व उसके लोगों के बीच बहुत मतभेद हुआ और उन्होंने चुपके चुपके एक दूसरे से कानाफूसी की।
इससे पहले हमने कहा कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों के मुकाबले में जादूगरों को बुलाया ताकि अपने विचार में हजरत मूसा को अपमानित कर सके। किंतु उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ का कार्यक्रम सब लोगों के सामने हो, ताकि फिरौन और उसके जादूगरों को लोगों की आंखों के सामने पराजित करके अपनी सत्यता को सिद्ध कर दें और आजकल की भाषा में इस धमकी को अपने और अपने धर्म के परिचय हेतु एक अवसर के रूप में प्रयोग करें।
जब निर्धारित दिन सभी लोग निर्धारित स्थान पर एकत्रित हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों और फिरौन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी ईश्वर का समकक्ष ठहराना और उसके चमत्कारों को जादू टोना बताना ईश्वर पर लांछन लगाने जैसा है, जो तबाही और विनाश का कारण बनता है और इसके परिणाम में पराजय और घाटे के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, किंतु वे अपनी ये बातें दूसरों से छिपकर अत्यंत धीमे स्वर में कर रहे थे ताकि लोग उनके मतभेद को न समझ सकें।
रोचक बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों को चुनौती देने के स्थान पर उन्हें मूर्तियों की पूजा छोड़कर अनन्य ईश्वर की छाया में आने का निमंत्रण दिया। उनका यही व्यवहार, जो उनकी सच्चाई का चिन्ह था, जादूगरों के बीच मतभेद का कारण बन गया और उनमें से कई ने यह सोचा कि मूसा वास्तव में ईश्वर के पैगंबर हो सकते हैं और उनकी धमकियां व्यवहारिक हो सकती हैं।
इन आयतों से हमने सीखा कि किसी के संबंध में झूठ बोलकर और उस पर आरोप लगाकर कभी भी हम वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। इस स्थिति में पराजय और निराशा हमारी प्रतीक्षा में होगी।
शत्रुओं के बीच भी मतभेद होता है, किंतु वे अपने मतभेदों को ईमान वालों की दृष्टि से छिपाने का प्रयास करते हैं।
आइए अब सूरह ताहा की 63वीं और 64वीं आयतों की तिलावत सुने।
إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
فرعون के लोगों ने कहा, निश्चय ही ये दोनों जादूगर हैं और चाहते हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल बाहर करें और तुम्हारे उत्तम मार्ग को तबाह कर दें। तो हे जादूगरों, तुम सब मिलकर अपने उपाय जुटा लो, इन दोनों के मुकाबले में फिर पंक्तिबद्ध होकर आओ और जो आज विजयी रहा निश्चित रूप से वही सफल हुआ।
फिरौन के कुछ लोगों और कुछ जादूगरों पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों के प्रभाव के बाद फिरौन के लोगों ने उनकी बातों के प्रभाव को रोकने के लिए हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम पर दो प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे अपनी इन बातों व कार्यों से सत्ता हाथ में लेना एवं तुम्हें इस धरती से बाहर निकालकर बनी इसराइल को सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी प्रकार वे चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के धर्म को, जो अत्यंत उच्च व ठोस धर्म है, समाप्त करके तुम्हें अपने धर्म में ले आएं।
स्वाभाविक है कि साधारण लोग इन दोनों ही बातों को स्वीकार नहीं करेंगे और इस पर प्रतिक्रिया जताएंगे। दूसरी ओर उन्होंने जादूगरों से कहा कि हर प्रकार के मतभेद से दूर रहो और अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके दृढ़ता के साथ मूसा और हारून के समक्ष डट जाओ कि आज जो इस मैदान में जीतेगा वही श्रेष्ठ होगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि अत्याचारी शासक लोगों को ईश्वर के प्रिय बंदों के विरुद्ध उकसाने के लिए उन्हें सत्ता लोलुप एवं राष्ट्रीय संस्कृति व संस्कारों का विरोधी दर्शाने का प्रयास करते हैं।
सत्य से मुकाबले के लिए शत्रु अपनी पूरी शक्ति और संभावनाओं का प्रयोग करते हैं और इस मार्ग में एकजुट रहते हैं। यदि सत्य के अनुयायी एकजुट नहीं होंगे तो पराजित हो जाएंगे।
आइए अब सूरह ताहा की 65वीं और 66वीं आयतों की तिलावत सुने।
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
جادوگروں نے کہا हे मूसा तुम अपना जादू फेंकते हो या हम इसमें पहले फेंकने वालों में से हो जाएं? मूसा ने कहा बल्कि तुम ही लोग फेंको। फिर सहसा ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के बल पर मूसा को दौड़ती हुई प्रतीत हुईं।
इस मैदान में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का मार्ग प्रशस्त किया कि विरोधियों के पास जो कुछ भी है वे मैदान में ले आए ताकि उनके पास जादू के लिए कोई चीज बाकी न बचे। उन्होंने लोगों की आंखों के सामने अपने जादू टोने के बल पर कुछ ऐसा किया कि आम लोगों के साथ ही हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को भी ऐसा आभास हुआ कि जादूगरों द्वारा जमीन पर फेंकी गई रस्सियों और लाठियों में जान पड़ गई है और वे रेंगने लगी हैं। आगे की घटना का वर्णन अगले कार्यक्रम में किया जाएगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि सत्य की रक्षा के मार्ग में पहले विरोधियों को इस बात का अवसर देना चाहिए कि वे अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करें और फिर ठोस व तर्कसंगत उत्तर द्वारा उन्हें पराजित कर देना चाहिए।
जादू टोने से चीजों की वास्तविकता नहीं बदलती बल्कि इससे लोगों की दृष्टि व सोच प्रभावित होती है और वे वस्तुओं को किसी दूसरे रूप में देखने लगते हैं।
दोस्तों 15 खुरदाद अर्थात 5 जून के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों संघर्ष एक ऐसी चीज है जिसमें धैर्य प्रतिरोध और उसका जारी रहना बहुत जरूरी है। कोई भी संघर्ष धैर्य व प्रतिरोध के बिना सफल नहीं हो सकता। जिस इंसान का उद्देश्य जितना बड़ा होता है उसे उतना ही अधिक धैर्य व संयम से काम लेना पड़ता है। इंसान को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो इंसान अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है वो कठिनाइयों व समस्याओं से विचलित नहीं होता और उसकी नज़र सदैव गंतव्य पर होती है। 15 खुरदाद 1342 हिजरी शमसी अर्थात 5 जून 1963 को ईरान में जो घटना घटी वो शाह की अत्याचारी सरकार के खिलाफ ईरानी राष्ट्र के संघर्ष के इतिहास में अमर हो गई। उस समय ईरान में जो राजनीतिक हालात थे उनके दृष्टिगत तीन पहलुओं से 15 खुरदाद की घटना महत्वपूर्ण है। पहला यह कि इस ऐतिहासिक घटना का संबंध ईरान के इस्लामी क्रांति की पहले की घटनाओं से है। जिस चीज ने 15 खुरदाद की घटना की भूमि प्रशस्त की वो जन विरोधी कैपिटुलेशन का पारित होना था। इस कानून के अनुसार अमेरिकी जो भी अपराध ईरान में करते उन पर ईरान में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
15 खुरदाद की घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये था कि इससे ये स्पष्ट हो गया था कि ईरानी जनता की क्रांति का आधार इस्लाम था जिसका उससे पहले कोई इतिहास नहीं था। ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खोमेनी की एक विशेषता ये थी कि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उन्होंने 15 खुरदाद की घटना से 3 दिन पहले आशुरा के उपलक्ष्य में पवित्र नगर कुम के धार्मिक शिक्षा केंद्र फैजिया में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका, इसराइल और शाह की अत्याचारी सरकार की नीतियों और उनके षड्यंत्रों की पोल खोली थी।
उनके इस भाषण पर शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और शाही सरकार के सुरक्षा बलों ने 15 खुर्दा 1342 हिजरी शमसी अर्थात 5 जून 1963 की सुबह में पवित्र नगर कुम में स्थित इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तेहरान स्थानांतरित करके उन्हें जेल में बंद कर दिया। जब इमाम खुमैनी के गिरफ्तार होने की खबर ईरानी शहरों में फैली तो कुम, तेहरान, वरामीन, मशहद, इस्फहान और शिराज जैसे नगरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन जारी रहे यहाँ तक कि इमाम खुमैनी को दोबारा गिरफ्तार करके 15 वर्षों के लिए देश से निष्कासित कर दिया गया।
शाह ने इमाम खुमैनी को सबसे पहले तुर्की निष्कासित किया, फिर वहां से उन्हें कुछ समय के बाद इराक के पवित्र नगर नजफ और फिर वहां से फ्रांस निष्कासित कर दिया। घुटन और दमन के वातावरण में स्वर्गीय इमाम खुमैनी विश्व के वर्चस्ववादियों और साम्राज्यवादियों को संबोधित करके कहते थे, शक्तियों, बड़ी शक्तियों और उनके नौकरों व पिछलग्गों को जान लेना चाहिए कि अगर खुमैनी अकेले भी रह गए तब भी अत्याचार को फ्लोराने के शुरुआत से संघर्ष का उनका जो रास्ता है उसे वो बाकी रखेंगे और महान ईश्वर की मदद से इस्लामी जगत के संघर्षकर्ताओं के रहेंगे और नंगे पांव रहकर उन तानाशाहों की आराम की नींद को हराम कर देंगे जो अत्याचारों के जारी व बाकी रहने पर आग्रह कर रहे हैं।
स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि हमारा दायित्व है कि हम अन्याय व अत्याचार के मुकाबले में डट जाएं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अत्याचार से संघर्ष करें, उसका विरोध करें। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि कहीं हम नाकाम न हो जाएं। पहली बात तो यह है कि हम विफल व नाकाम नहीं होंगे, ईश्वर हमारे साथ है। और दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि हम विफल हो जाएंगे तो ये विदित विफलता व नाकामी होगी और आध्यात्मिक रूप से हम विफल नहीं होंगे। और आध्यात्मिक सफलता इस्लाम के साथ है, मुसलमानों के साथ है और हमारे साथ है।
15 खुर्दाद की घटना का एक महत्वपूर्ण संदेश अत्याचारियों के मुकाबले में न तो नतमस्तक होना चाहिए और न ही साम्राज्यवादियों की धौंस धमकी से प्रभावित होना चाहिए। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए इमाम खुमैनी ने फरमाया था, 15 खुर्दाद इस्लाम और मुसलमानों के पुनर्जन्म का दिन है। 15 खुर्दाद के दिन को याद रखना मानवीय मूल्यों को याद रखने का दिन है। 15 खुर्दाद का दिन प्रतिरोध का वो दिन है जिसने शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार का अंत कर दिया। 15 खुर्दाद को शहीद होने वाले शूरवीर जवानों, मर्दों और महिलाओं ने अपने पावन लहू से तानाशाही की बुनियादों को धराशायी व ध्वस्त कर दिया। 15 खुर्दाद को शहीद होने वालों ने भावी पीढ़ियों को प्रतिरोध का रास्ता दिखा दिया और साथ ही उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाली चीज को संभव करके दिखा दिया।
ईरानी संविधान में 15 खुर्दाद की घटना का उल्लेख इस्लामी क्रांति के इतिहास में भुलाई न जाने वाली घटना के रूप में किया गया है और इस दिन के महत्व के बारे में लिखा है, स्वर्गीय इमाम खुमैनी द्वारा अमेरिकी षड्यंत्रों पर आपत्ति ईरानी राष्ट्र के एकजुट होने का कारण बनी और वो यानी 15 खुर्दाद ईरान की इस्लामी क्रांति का आरंभिक बिंदु था। यद्यपि स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को ईरान से निष्कासित कर दिया गया था, परंतु जनता उनके दिशा निर्देशन की छत्र छाया में 15 खुर्दाद का आंदोलन आगे बढ़ा रही थी और शाह की अत्याचारी सरकार ने बहुत से लोगों की हत्या कर दी, फांसी दे दी और जेल में डाल दिया। परमाणु से पता चला कि 15 खुर्दाद के दमन में शाह की अत्याचारी व तानाशाही सरकार अकेली नहीं थी, बल्कि अमेरिकी और जानवी शासन ने भी उसका साथ दिया। दूसरे शब्दों में शाह के अलावा अमेरिका और इसराइल ने भी ईरानी जनता का खून बहाने में संकोच से काम नहीं लिया। शाह की तानाशाही सरकार ये सोच रही थी कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह के निष्कासित कर देने से वो क्रांति और क्रांतिकारियों का दमन कर देगी, परंतु जो हुआ वो शाह की अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत हुआ। स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अपने विचारों से ईरानी जनता को जागरूक बना रहे थे और ईरानी जनता व लोग उनके विचारों और आदेशों को व्यवहारिक बनाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। 15 खुर्दाद से पहले जो भी आंदोलन ईरान में हुए थे, यद्यपि उनमें धार्मिक और राजनीतिक नेता अलग अलग थे, परंतु 15 खुर्दाद में राजनीतिक और धार्मिक नेता एक हो गए थे।
पंद्रह खुर्दाद और दूसरे आंदोलनों में एक मूल अंतर यह है कि जब कोई आंदोलन आरंभ होता था तो कुछ दिनों के बाद वो कुछ व्यक्तियों और विदेशी गुटों के हितों की भेंट चढ़ जाता था, परंतु पंद्रह खुर्दाद के आंदोलन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पंद्रह खुर्दाद का जो आंदोलन था वास्तव में उसका आधार इस्लाम धर्म की शिक्षाएँ थीं। इसलिए विदेशी शक्तियां न केवल इसका समर्थन नहीं करती थीं, बल्कि उन्होंने इसे अपने लिए भी खतरा समझा और इसी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने इसके दमन में शाह का साथ दिया। 15 खुर्दाद से पहले जो आंदोलन होते थे वे तेहरान या कुछ दूसरे शहरों तक सीमित होते थे, परंतु 15 खुर्दाद का आंदोलन ईरान के किसी शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समूचे ईरान में फैल गया था।
यद्यपि 15 खुर्दाद का आंदोलन 57 साल पहले हुआ था और विदित में उसे कुचल दिया गया था, परंतु उसकी जो विशेषताएं थी उसके कारण वो जारी रहा, यहाँ तक कि उसने 2500 साल पुरानी राजशाही सरकार का अंत करके उसे इतिहास का भाग बना दिया और आज पूरे ईरान में वो समस्त समाजों के लिए सीख बन गई। 15 खुर्दाद के आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि वो पूरी तरह धार्मिक था, जबकि उससे पहले तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए होने वाले जैसे आंदोलन पूरी तरह धार्मिक नहीं थे। 15 खुर्दाद से पहले होने वाले आंदोलनों के राजनीतिक और धार्मिक नेता अलग अलग होते थे, जबकि 15 खुर्दाद के आंदोलन में ऐसा नहीं था और उसका नेता एक साहसी राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति था और समस्त गुट और लोग भी उसे अपना नेता कहते व समझते थे।
15 खुर्दाद से पहले होने वाले आंदोलन आरंभ में ही या बीच में कुछ लोगों के हितों के कारण अपने लक्ष्यों से हट गए, परंतु 15 खुर्दाद को होने वाला आंदोलन स्वतंत्र रूप से जन आंदोलन और उसका आधार इस्लाम था। 15 खुर्दाद का आंदोलन तानाशाही के खिलाफ इतने व्यापक पैमाने पर होने वाला पहला आंदोलन था जिसमें ईरान की मुसलमान महिलाएं हिजाब के साथ थीं और यह आंदोलन पवित्र नगर गुम से आरंभ हुआ था जिसमें बहुत सी ईरानी महिलाएं भी शहीद हुईं। 15 खुर्दाद 1342 हिजरी शमसी में होने वाले आंदोलनों के कुछ परिणाम लघुकालिक जबकि कुछ दीर्घकालिक थे और उसके परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम शाह की तानाशाही सरकार का अंत था।
दोस्तों, रोचक बात यह है कि 15 खुर्दाद के आंदोलन से पहले तक रजा शाह स्वयं को एक मुसलमान व मोमिन व्यक्ति दिखाता हुआ दर्शाता था और कभी कभी वो ये भी कहता था कि उसे गैबी सहायता प्राप्त है, परंतु 15 खुर्दाद के आंदोलन के दौरान उसने अपनी वास्तविकता स्पष्ट कर दी। वो स्वयं को शिया धर्म और शिया मुसलमानों का रक्षक समझता था और इस राष्ट्र के दुश्मनों को शियों का दुश्मन बताता था। जैसा कि उसका पिता रजा खान सत्ता तक पहुंचने के लिए आरंभ में इमामों की पावन समाधियों की जियारत करने और धर्मगुरुओं से मुलाकात के लिए जाता था, یہی نہیں، رضا خان ننگے پیر امام حسین علیہ السلام کی شوک سبھاؤں میں بھاگ لیتا تھا، مگر جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی سرکار کے استمبھ مضبوط ہو گئے ہیں تو اس نے حجاب کرنے اور محرم میں امام حسین علیہ السلام کی آزاداری کو منع کر دیا۔
1342 ہجری شمسی میں شاہ کے سرکشا کرمیوں نے پوتر گم کے پرسدھ دھارمک شکشا کیندر مدرسہ فیضیہ پر حملہ کر کے بہت سے دھارمک چھاتروں کو شہید کر دیا۔ شاہ کے اس کاریہ سے اس کے چہرے پر اسلام کی بڑی نقاب ہٹ گئی اور اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی جس سے اس کے اس کرتے کا اوچتیہ درشایا جا سکے۔ یدپی شاہ نے اس کے بعد دوبارہ مسجدوں کا نرمان اور پوتر قرآن کو چھپوانا آرمبھ کر دیا تاکہ دوبارہ لوگوں میں سوئم کو دھارمک درشائیں، پرنتو اس کے اس پاکھنڈ کا کوئی نتیجہ نہیں رہا اور 15 خرداد کا جو آندولن تھا اس کا نیتتو دھرم گرو کر رہے تھے اور اس آندولن کے بعد شاہ کی تاناشاہی سرکار کو اویدھ سرکار کی سنجا دی گئی اور سماج میں جو مشکلیں و سمسیاں تھیں اس کے لیے شاہ کو ذمہ دار بتایا گیا اور پہلی بار تاناشاہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ اس کے پہلے تک کوئی شاہ پر ٹکٹک پڑنے کرنے کا ساہس نہیں کرتا تھا، پرنتو امام خمینی نے 1342 ہجری شمسی میں عاشور کے دن شاہ کی آلوچنا کی جس سے شاہ کی جو دھونس تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ وہ چیز ہے جسے شاہ کے گپتچر سیوا سواق نے اپنی رپورٹ میں سویکار کیا ہے۔
بہرحال 15 خرداد کے آندولن نے یہ سدھ کر دیا کہ جنتا اور لوگ اپنے بھوش کا نردھارن سوئم کر سکتے ہیں اور ایک جٹ رہ کر بڑی سے بڑی تاناشاہی سرکار کا بھی انت کر سکتے ہیں۔ یدیپی ان سرکاروں کو دنیا کی ورچسوادی شکتیوں کا سمرتھن ہی کیوں نہ پراپت ہو۔
تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے 15 خرداد کے بارے میں ایک وشیش کارکرم سنا۔ کارکرم آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں آپ اپنے وچار ہمیں اوشیہ بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔Thank you.